अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतनी अच्छी चीज़ें सीखी। तो सारी बात का खुलासा अभी तक जो मैंने की वो क्या है कि कुछ चीज़ों को अपनी आदत बनाइए। कभी भी नमाज के लिए एकदम ना बैठिए, बल्कि थोड़ा सा पहले से ज़हनी तैयारी के साथ नमाज शुरू करें। उससे इंशाल्लाह आपको ऐसे ही लगेगा जैसे खाना खाने से पहले हम जहन साजी करते हैं। फिर सर हमने ये भी सीखा कि मसनून अस्कार और दुआओं को भी याद करना है। अपनी मादरी ज़ुबान में जो चाहें अल्लाह से मांगे, मगर अपनी बात में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस से साबित जो दुआ है उसमें अपनी तरफ से इजाफे नहीं करने। और हर नमाज के बाद और रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है हिफाजत के लिए। शिरकी तौर तरीके जो लोग अक्सर हिफाजत की खातिर इख्तियार करते हैं वो नहीं करने, और मसनून अस्कार को पढ़ते ही रहना है। और देखिए एक एक दुआ के अंदर कितने मोती छुपे हुए हैं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान थी वो थोड़े में ज़्यादा बात करते थे, जिसको आप यहाँ महसूस कर रहे होंगे। और अब आगे एक बहुत ही अहम इशू, क्योंकि आज हमारे अंदर दीन असल में उस सोर्स से नहीं पहुँचा कि जिसको वाकई आप अल्लाह के नबी और सहाबा कराम का रिसोर्स कहते थे, कि वो तो हर बंदा खुद सीख लेता था और आपके इस बैठ के आपको करता भी देख लेते थे। अब हम चूँकि किताबों से मदद लेते हैं, किसी से पूछना पड़ता है, तो इसकी वजह से फिर कुछ ना कुछ हमारे अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आता है। तो अगला टॉपिक बड़ा अहम है, और वो क्या है कि नमाज के बाद, यानी जब आप नमाज पूरी कर चुके, तो क्या फिर उसके बाद कोई इज्तमाई दुआ है, या नमाज और दुआ का क्या ताल्लुक है? यानी आप ये कह लीजिए कि दुआ मांगने के लिए फ़र्ज़ नमाज के बाद मिल के दुआ कराना। हमारे कुछ कल्चर ऐसे हैं कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं और मस्जिद में, और उसके बाद फिर कहते हैं चलें जी दुआ के लिए हाथ उठा लें, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ और भी लोग ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेकर चलते हैं। तो आप और मैं देखेंगे कि इन सारी चीज़ों में किस तरीके से ये सब कुछ हमें हदीस से मिलता है। मैं पढ़ के आपके सामने रखती हूँ, पूरी नज़र जमा कर हदीस को देखा करें, क्योंकि जब आप अपनी आंखों से ये चीज़ें देख और पढ़ लेते हैं तो उसके बाद शरह सदर भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तमाई दुआ। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तमाई दुआ के सबूत में कोई मकबूल हदीस नहीं। मकबूल क्या होता है? हमारे यहाँ तो कहते हैं ना शोहरत वाला, बड़ी मकबूलियत है। असल वजह तो वही होती है, लेकिन हमारे यहाँ लफ्ज़ मकबूलियत और है। मुराद क्या है? जिसको कबूल किया जाए। यानी हदीसें तो हैं, लोग बात तो करते हैं, लेकिन कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं है। नए ताज्जुब की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे, पांचों वक्त नमाजें पढ़ाईं। सहाबे कराम रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की कसीर तादाद ने आपकी इक्तदा में नमाजें पढ़ी, मगर इनमें से कोई एक भी इज्तमाई दुआ का जिक्र ना करे तो ये इसके बुतलान यानी इसके बातिल होने की वाज़ेह दलील है। यानी आप समझ गए होंगे कि सहाबे कराम तो अल्लाह के नबी के इशारे भी लिख लेते थे, आपने बटन खोले थे कि बंद है ये भी नोट करते थे, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हदीस ना हो? और जबकि इतने अहम और इतना माशाल्लाह खूबसूरत काम, दुआ नमाज के बाद और वो भी इज्तमाई, ये तो बड़ी प्यारी दुआ आती है। तो फिर क्या है कि हमें हदीस में इसके बारे में कोई बात नहीं मिलती? इसके बारे में कुछ अकवाल सुन लेते हैं। मौलाना अब्दुलरहमान मुबारकपुरी कहते हैं कि अगर कोई इनफरादी तौर पर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांग लेता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। देखिए आप और मैं जब चाहे मांगे, हमारा रब है, मैं मेरा रब, मुझे किसी से क्या लेना, मैं क्यों पूछूँ किसी से? वो तो खुद कहते हैं वैसा साला कई बात ही अन्नी फनी करीब, ठीक है। तो मेरा अपना मामला है, मैं करूँ मैं ना करूँ, मैं कुछ भी मांगू, उर्दू पंजाबी इंग्लिश फारसी जिस जुबान में कोई मांग ले, ठीक है। लेकिन सब के साथ मिलकर एक रस्म बनाकर एक रिवाज के तौर पे करना, तो उसके बारे में इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला, इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्ला, इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्ला और बहुत से मुहक्किकीन, मुहक्किकीन कौन होते हैं? रिसर्च करने वाले उलमा ने फ़र्ज़ नमाज के बाद मुरव्वजा, जिसका रिवाज हो, इज्तमाई दुआ का इनकार किया है और इसे बिदत कहा गया है। इज्तमाई दुआ की दलील में बयान की जाने वाली तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं। तफसील देखिएगा, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको अगर आप देख लें तो आपको खुद ब खुद भी बात समझ आ जाती है। तो आइए ज़रा आप देखें, ज़रा से नोट कर लें, कहीं नींद ना आ गई हो बीच में तो आप कहें कि हमने तो इस बुक में ये हदीसें पढ़ी थी। हदीसें बुक में ही हैं लेकिन ज़ईफ़ हैं। मुराद ये है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हदीस से ये साबित है, तो आइए वो दलाइल जो देते हैं वो क्या हैं, उसकी क्या हकीकत है, इसको हम अभी देख लेते हैं। पहली रिवायत जो पेश की जाती है अमूमन, वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से है। और दईफन जिद्दा, बहुत ज़ईफ़ रिवायत है। किताब का नाम है अमलुल यौम वल लैलती इब्ने सनी की, 138 हदीस है। रिवायत क्या पेश की जाती है कि जो बंदा हर नमाज के बाद अपने दोनों हाथ फैलाकर दुआ करे, अल्लाह ताला इसके हाथों को ना मुराद नहीं लौटाता। अब देखिए ज़रा, मैं आपको इल्मी बात भी बता ही दूँ। किताब तो आप पढ़ रहे हैं नमाज की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई गिरे हदीस से मुतल्लिक भी जो हमारे जहनों में पड़ी होती हैं वो खुल गई। क्या बुरी बात है, देखिए ना। अब ये हदीस पेश कहीं कोई करे तो इसमें कोई बुरी बात दिख रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बुरी बात, कोई गलत काम, कोई गलत तरीका इख्तियार करने की तो बात नहीं है। नमाज के बाद अपने दोनों हाथ फैलाए, बहुत प्यारा अमल है। दुआ भी करें, अल्लाह नामुराद नहीं लौटाता, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खूबसूरत बात है, यानी एक लफ्ज़ का भी इस पे एतराज़ नहीं। ऐसे ही है ना। लेकिन दो चीज़ें हदीस की हैं, एक है मतन और एक है सनद। अगर आप इसी हदीस को देखते ना तो अमूमन किताब में जो लिखा होता है ये मतन लिखा होता है। सनद क्या होती है? हज़रत अनस जो सहाबी थे, हज़रत अनस से लेकर ये बात जिस किताब तक पहुंची उसकी चेन को। आप लिखिए, ये जुमला लिख लें तो आपको हदीस का एक बहुत प्यारा असूल समझ आएगा। इसके मतन में कोई खराबी नहीं, कुछ में होती है, वो आएगी कहीं तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? कोई अबस बात नहीं, कोई गैर इस्लामी बात नहीं, कोई किसी और इस्लाम के कानून से या किसी रिचुअल से टकराती हुई बात नहीं। मसलन कोई कहता है जाके किसी की कब्र पे सजदा करो फर्ज नमाज के बाद, तो ये बात मानी जाएगी? नहीं। इसका मतन खराब है, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट खराब है कि अल्लाह के नबी कैसे किसी की तरफ सजदा करने का हुक्म दे सकते हैं जबकि ये शिर्क है, ठीक है? तो वो तो हो गई बात ही खराब। यहाँ बात ठीक है, जिस जरिए से जिस चेन और सनद के साथ पहुंची वो खराब है। कैसे? देख लीजिए इसका इल्मी जायजा। इसकी सनद में इसहाक बिन खालिद एक नाम आता है जो मुनकिर अहदीस बयान करता है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि इसके एक और रावी अब्दुल अजीज बिन अब्दुलरहमान की हसीफ से बयान करदा रिवायात झूठी और मन घड़त होती हैं। तीसरी वजह इस हदीस के ज़ईफ़ होने की क्या है कि हसीफ से हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हो से सिमा यानी सुनना मालूम ही नहीं, यानी जिनका नाम है कि एक कहता है मैंने दूसरे से सुना, कब सुना, कहाँ सुना, कुछ नहीं पता। चौथी वजह लीजिए कि इसके अलावा इस रिवायत में इज्तमाई दुआ का कोई जिक्र नहीं। हाथ उठाने की बात है ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन इज्तमाई दुआ की इससे दलील तो नहीं मिलती, ठीक है? तो ये हदीस ज़ईफ है। हम इसको इसकी चेन यानी इसकी सनद के नाते से रिजेक्ट करेंगे क्योंकि बात ऑथेंटिक जरिए से नहीं पहुंची। और ये चेन जो है ना, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत से जुमले हैं कि लौलल असनाद, अगर सनद ना होती या सनदें ना होती, यानी अगर कोई चेन साबित नहीं कर सकता ना, तो फिर तो हर बंदा कहता मन काला व माँ काला। तो हमारे दीन में बहुत ज़्यादा अहमियत है बात की भी, लेकिन किस जरिए से पहुंची इस बात की भी है। तो हमेशा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको बरकतें भी देगा और आपके ऊपर बेहतरीन तरीके से अपनी रहमतें भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसके बाद देखिए अगली एक और चीज़ जो अमूमन इस पे पेश की जाती है। कहा जाता है कि सैयदना यजीद बिन अस्वद आमरी रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर का सलाम फेरा और दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। इस रिवायत के मुतल्लिक मौलाना उबैदुल्ला रहमानी रहमहुल्ला लिखते हैं, कुतब हदीस में हज़रत यजीद बिन अस्वद आमरी से मरवी हदीस में मस्कूरा यानी जिक्र किए हुए अल्फाज क्या हैं? दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। सिरे से इसका जिक्र ही नहीं, यानी देखिए टेक्स्ट में कुछ बात हटी भी है, बल्कि असल हदीस जिसकी सनद हसन है इसको देखने से दुआ ना होने का सबूत मिलता है। यजीद बिन अस्वद कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज करने हाजिर हुआ, मैंने आपके साथ मस्जिद खैफ में सुबह की नमाज पढ़ी, जब आपने नमाज मुकम्मल फरमाई तो आप नमाजियों की तरफ फिरे, अचानक आपने लोगों के पीछे दो आदमी देखे जिन्होंने आपके साथ नमाज नहीं पढ़ी थी, आपने फरमाई ने मेरे पास ले आओ, ठीक है? रिवायत देखिएगा तिर्मिजी की 219 और सही हसन रिवायत है। तो इस हदीस पे अब थोड़ी सी बात करते हैं। इसके अलावा इन गैर साबित शुदा अल्फाज में भी इज्तमाई दुआ का जिक्र नहीं है। देखिए इल्मी बातें हैं, अगर कोई बात ना समझ आए ना तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला اتنا شغف اور شوق دے دین کو سیکھنے کا کہ بہترین طریقے سے میں ان ساری چیزوں کو لے سکوں اور بہترین طریقے سے پھر اس کو مان سکوں. کیونکہ آپ کا میرا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان احادیث کو اپنے دل اور جان سے لگا کر رکھیں. اگر ہمارے محبوب ہمارے پیارے رسول نے یہ باتیں کہی ہیں تو ہم کیوں جھٹلائیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو مجھے کبھی اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح بات لیں اور اس کو جھٹلا دیں اور اس کے اوپر پیچھے ہو جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور دس اینڈ دیٹ, اس طرح کی باتوں کو کرنا کرانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو مجھے ایک بات کا یقین ہے نا کہ جو حتمی بات ہے جو صحیح بات ہے نا اس کو لینا چاہیے. آپ کیوں شک میں پڑتے ہیں اور آپ کیوں اس چیز پہ پڑتے ہیں جس سے ڈاؤٹس آئیں؟ پھر سر آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے. اب یہ ایک روایت ہے الادب المفرد, امام بخاری ہی کی یہ بک ہے 315 جلد 1. اب یہ بخاری کی شرط پہ ٹھیک حدیث ہے, لیکن آپ دیکھیے اس میں جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ کہ جتنی بھی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں نا ان سب میں انفرادی طور پر تو ہے دعا مانگنے کا ذکر, لیکن جماعت کے ساتھ جمع ہو کے مانگنے کا نہیں. نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں, اور بعض احادیث کا موقع محل تو کچھ اور ہے مگر انہیں زبردستی زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. اس پہ ایک بک کا ریفرنس انہوں نے دیا ہوا ہے, صلاۃ الرسول, حکیم صادق سیالکوٹی صاحب کی بک ہے, اس میں انہوں نے دلائل دیے ہیں اور اس کی تخریج شیخ عبد الرؤف بن عبد الحنان صاحب نے کی ہے. پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے اور اگر ابھی بھی دل ٹھک گیا تو ٹھیک ہے. اب اس میں چند غور طلب باتیں اس کو بھی لے لیں. کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ یہ سوال کوئی کر سکتا ہے؟ آپ میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو بتا رہے ہیں تو کوئی کر لے اگر تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ ہے نا دل کا سوال ذہن میں آتا ہے, تو آئیے ذرا اس کا بھی جواب لیجئے. پہلی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقت ہے, یعنی کسی بھی وقت کیجئے, وقت کی قید نہیں ہے. البتہ جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہیں ترجیح دیجئے, یعنی ڈونٹ میک اٹ این ایشو, یہ ہے اس کا مطلب. پھر دوسری بات ہے کہ جو عبادت ہر وقت جائز ہو اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو, اور یہ مسلم کی روایت ہے 782. یعنی آپ کچھ کہے بغیر یا اس کو نماز کا حصہ کیے بغیر کر لیجئے, جب دل چاہے کر لیں. لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ تمام جائز اوقات چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے, کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے؟ مثلاً آپ ایک مثال لیجئے گا, اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے. آپ نے آج کوئی صورت پڑھی, میں نے کوئی پڑھی, آپ نے صبح میں پڑھی, دوپہر میں پڑھی, ممکن ہے نا, اٹس فائن, نو پرابلم. لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینا شروع کر دیں کہ تمام اہل اسلام روزانہ نماز فجر کے بعد 20 مرتبہ سورت قمر پڑھا کریں, اس کا اتنا ثواب ہے, پھر اس کے حلقہ اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دیں. یعنی کوئی کہتا ہے اچھا سورت قمر 20 بار پڑھوں فجر کے بعد, اتنا ثواب ہے, میں بھی پڑھتا ہوں, وہ بھی پڑھے گا, یہ بھی پڑھے گا, ٹھیک ہے نا. اور ایسا کتنا معروف ہے ہمارے کلچر میں, دعائیں بھری پڑی ہیں, وظیفے بنے ہوئے ہیں جن میں, حالانکہ کسی کی سنت نہیں ہے حدیث اور قرآن سے, ایون اثر نہیں ہے, صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے اس میں, پیچھے والے لوگوں کی بات کی باتیں ہیں. آپ اگر لوگ اس کی سختی سے پابندی کریں تو ان کا یہ عمل دلیل کا محتاج ہوگا کہ دلیل دکھائیے کدھر لکھا ہے کہ سورت قمر کو 20 بار سورت فجر کے بعد نماز کے پڑھے. یا اللہ کے نبی نے پڑھا ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے, صحابہ میں سے کسی نے پڑھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا وہ بھی ٹھیک ہے, باقی اس کے بعد میں آپ تو عام لوگ ہیں. اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آ جائے تو سنت ہوگا ورنہ بدعت. तो बिदअत तो होती भी वही है ना कि जो अच्छी बात अच्छे काम अच्छी नीयत से की जाती है लेकिन उसकी दलील नहीं मिलती। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मौजू क्लियर है। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। जो इबादत हर वक्त जायज़ हो, अगर इसे किसी ख़ास मौके पर करना चाहते हैं तो एहतियातन ये मालूम कर लें कि कहीं इस मौके के लिए शरीयत ने कोई फ़र्ज़ तो मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि अगर इस मौके के लिए शरीयत ने कोई फ़र्ज़ मुकर्रर किया है तो फिर फ़र्ज़ तर्क करके जायज़ काम में लगे रहना कतन जायज़ नहीं। नोट कीजिएगा ये बात। मसलन नमाज बाजमात खड़ी हो और जिसने यही नमाज जमात के साथ पहले नहीं पढ़ी, इसके लिए जायज़ ही नहीं कि वो जमात में शामिल होने की बजाय सुन्नतें या नवाफिल पढ़ता रहे, कोई विर्द या वजीफ़ा, दुआ या तिलावत करता रहे, क्योंकि इन जायज़ नेकियों को मौखर करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मौके के फ़र्ज़ को बिला वजह मौखर करने की कतन कोई गुंजाइश नहीं। अगर इस ख़ास मौके के लिए शरीयत ने कोई सुन्नत मुकर्रर कर रखी है तब भी जायज़ काम छोड़कर सुन्नत को तरजीह दी जाएगी, अगरचे सुन्नत फ़र्ज़ नहीं। इसे किया जाए तो बहुत ज़्यादा सवाब है और अगर किसी वजह से कभी छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं। मगर एक मौके की सुन्नत को जब हमेशा तर्क किया जाएगा तो गुनाह लाजिम आएगा, क्योंकि सुन्नत छोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए होती है। इसे अपनाना ही हुब्बे रसूल का तकाजा है, जबकि इसे छोड़े रखना इससे बेरगबती की दलील है और इरशाद नबवी है, जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती की वो मुझसे नहीं। ये रिवायत बड़ी मारूफ है, बुखारी की रिवायत है 5063। इसकी मिसाल फ़र्ज नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का इज्तमाई विरद है। इसमें कोई शक नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफसल जिक्र है, लेकिन इसे किसी भी वक्त करना जायज़ है। और चूंकि फ़र्ज नमाज के बाद वाला वक्त भी औकात में से एक वक्त है, लिहाजा अगर कोई शख्स किसी फ़र्ज नमाज के बाद अपने तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है तो बिल्कुल जायज़ है। ठीक है ना, दिल में अल्लाह के लिए प्यार है, अपने ला इलाहा इल्लल्लाह को याद आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है आपका मामला। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि फ़र्ज नमाज के फ़ौरन बाद नबी सल्लम का मामूल और सुन्नत कुछ और हो, तो फिर हर फ़र्ज नमाज के बाद हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने का मतलब यह है कि इस मौके की सुन्नत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द मौखर हो सकता है लेकिन नमाज के बाद वाले मसनून अज़कार और दुआएं हमेशा मौखर करना किसी तरह भी जायज़ नहीं। इसी तरह कोरस यानी जमा होकर इकट्ठे होकर कोरस की शक्ल में बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह के इज्तमाई विर्द की पूरे अहद नबूवत में कोई मिसाल ही नहीं है। देखिए साहबा ने जो काम नहीं किया वो आप में कैसे कर सकते हैं? अच्छा काम होता, मसनून होता, पसंदीदा होता तो फिर वो करते ना, फिर तो, वरना दीन तो वक्त के साथ से बदलता ही चला जाए। ये भी एक सवाल लिखिए, दुआ और विर्द में क्या फ़र्क है? देखिए औराद विर्द की जमा है, एक ही लफ्ज़ को बार बार पढ़ना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये विर्द होता है। और अज़कार के जिक्र जो भी हमने देखे हैं, ये जो इज्तमाही दुआ और जिस तरीके से हमारे यहाँ कराई जाती है ना, वो इन दोनों में नहीं आता। ठीक है, फिर इस तरह आप देखिए कि अगर किसी मौके की सुन्नत के साथ एक और सुन्नत आ मिले तो दोनों सुन्नतों पर अमल करना दुरुस्त होगा। मसलन किसी फ़र्ज नमाज की जमात हुई, इमाम साहेब ने सलाम फेरा, इमाम साहेब और मुक्तदी हजरात अपने तौर पर मसनून अज़कार और दुआ में मसरूफ हो गए, फिर किसी वाकई हाजतमंद ने इमाम साहेब से बारिश के लिए या बीमार के लिए या किसी दूसरे जायज़ मकसद के लिए यानी रस्म बनाने के लिए नहीं, ऐसे ही किसी ने कहा आज दुआ करा दें, आज कोई बीमार है अच्छा बारिश हो जाइए, खलूस नियत से दुआ की दरख्वास्त की, तो किसी के मुतालबे पर दुआ करना भी सुन्नत है, लिहाजा दुआ करना जायज़ होगा। यानी आप देख रहे हैं कि ये ऐसा बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर झगड़े किए जाएं। आज हमारी मस्जिदों में मुख्तलिफ लोग इन बातों को बुनियाद बनाकर झगड़े शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा झगड़ना जायज़ नहीं है, ऐसे अमल को आगे पीछे कर लेना ये दूसरी तरफ इसको ले जाएं ये और चीज़ होगी, लेकिन ऐसी चीज़ों को बुनियाद बनाकर इस किस्म की बातों के झगड़े छेड़ देना ये दुरुस्त नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात अपनी अहमियत की वजह से हमें समझ आ चुकी होगी। याद रखिए कि ना हाथ उठाकर इज्तमाई दुआ करना फ़र्ज़ नमाज का हिस्सा है, ना बाद वाले मसनून अज़कार का। यानी ये मसनून अज़कार में ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि असल में हमारा मिजाज नहीं है ना इस तरह का, तो हमें ये बातें मुश्किल लगती हैं। क्या इतनी भी क्या ज़रूरत है, जो कर रहे हैं करने दीजिए ना, कोई खैर ही है ना, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। जैसे बुरी बात क्यों नहीं है, आपको कौन कहता है कि आप इन चीज़ों को लें। लेकिन देखिए दीन तो समझिए, आप किसी मुल्क के अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ कानून में बातें नहीं मिला सकते। तो लिहाजा इज्तमाही दुआ करना फ़र्ज़ नमाज का हिस्सा है, ना बाद वाले मसनून अज़कार का, इसलिए इसका हमेशा अहतमाम करना दुरुस्त नहीं। यानी हिस्सा ही बना ले नमाज का, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज एक अलग इबादत है, हाथ उठाकर इज्तमाही दुआ करना एक अलग इबादत है। कभी कर लें कभी ना करें, लेकिन हिस्सा ना बनाइए इसको। और जब किसी शरई दलील के बग़ैर दो अलग अलग इबादत को एक मखसूस तरतीब के साथ हमेशा एक साथ इस तरह अदा किया जाए कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा मालूम हो, हत्ता कि एक के बगैर दूसरी को नामुकम्मल समझा जाए। कभी लोग कहते ना, लो वो दुआ ही नहीं मांगते, उठ के भाग जाते हैं। तो आप एक इबादत को दूसरी के साथ ऐसे जोड़ रहे हैं कि अगर किसी ने एक नहीं की तो आप उसको बुरा कहने लगे। इसी तरह एक शरई मसले की तरह लोगों को इसकी दावत, तरगीब और तालीम दी जाए, यानी कहा जाता है, सुनाया जाता है कि इस तरह दुआ मांगे। चौथी बात देखिए, जो शख्स इन इबादत को आपके तरीके के मुताबिक अदा ना करे, इसे मुनकिर और गुस्ताख की इल्काबात से नवाजा जाए, तो आप राह सुन्नत से भटक जाएंगे। क्योंकि जब मुख्तलिफ इबादात को अपनी मर्जी से यकजा करके एक नया तरीका राइज किया जाए, तो वो सुन्नत नहीं रहता, बिदत बन जाता है। एक एक पॉइंट पे गौर करेंगे ना तो दीन का मिजाज दिखेगा आपको। खूबसूरती के साथ इन मसलों को ले लो, इसको वजह ना बनाओ झगड़ने की। ये ऐसी बातें नहीं हैं कि जिस पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से झगड़े। ठीक है, एक और बात समझ लेते हैं, बात असूल की है। जो काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़रूरी भी हो और इसे करने के लिए कोई रुकावट भी मौजूद ना हो, फिर भी पूरे अहदे नबूवत में इसके किए जाने का कोई सबूत ना मिले, मगर हम ना सिर्फ खुद इसे हमेशा करें बल्कि दूसरों को भी इसकी दावत दें, तो ये बिलाशुबा बिदत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अहदे नबूवत में फ़र्ज़ नमाजों के बाद हाथ उठाकर इज्तमाही दुआ का अहतमाम करने में कोई रुकावट थी? यकीनन नहीं थी। फिर भी अगर किसी फ़र्ज़ नमाज के बाद इसका कभी अहतमाम नहीं किया गया, तो इससे मालूम हुआ कि इसका अहतमाम ना करना सुन्नत है। क्योंकि ये बात नामुमकिन है कि एक चीज़ दीन भी हो और अहदे नबूवत में कर सकने के बावजूद इसे कोई ना करे, या वो अमल किया गया हो मगर कबूल होने वाली हदीसें यानी मकबूल अहादीस के वसी जहीरे में इसका कोई सुराग भी ना मिले। ठीक है, तो फिर समझ आ गई बात कि जब आप किसी चीज़ को करें तो उसकी दलील आपके पास होनी चाहिए। एक और पॉइंट ले लीजिए। चलिए अब ये मसला समझ ही रहे हैं तो फिर पूरा ही समझते हैं। इंसान फितरतन सहूलत पसंद है ना, हमारी तबीयत में सहूलत, आसानी, रिलैक्सेशन। ठीक है, इससे मसनून दुआएं याद करना मुश्किल लगता है, गिरां गुजरता है, और चूंकि इसकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फ़र्ज़ नमाजों के बाद यकसुई के साथ 5-6 मिनट नहीं निकाल सकता। और इस सुन्नत से पहलू बचाने के लिए इसका मुतबादिल इजाद कर लिया गया, यानी इमाम साहब ने जैसे नमाज भी पढ़ा दी, अब दुआ भी वही करा दें। ठीक है, सलाम फेरते हाथ उठाएं, चंद मसनून या गैर मसनून अल्फाज पर मुश्तमिल छोटे छोटे जुमले बोलें और मुंह पर हाथ फेर कर तमाम नमाजियों को फारिग कर दें, जिसके बाद वो सब मसनून अस्कार पढ़े बगैर उठकर चल दें। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ये अस्कार नहीं आते उनको, नमाज जो सीखी थी उसके बाद बस दुआएं मांगी खुद से जो भी है। जैसे देखिए कौमे मूसा ने कहा था ना, फदुलना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ध, के सुस्त कौमें अमूमन दुआएं भी मजहबी रहनुमाओं से कराती हैं, कुछ तो भाई आप भी कीजिए। ठीक है, तो दर हकीकत ये दुआ नहीं रस्म है जो इंतहाई नेक नियति से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा की जाती है, यानी नीयत बहुत अच्छी है, सवाब की नीयत है और अल्लाह से मांगते हैं। और इसी तरह गैर शौरी तौर पर एक सुन्नत को मिटाने का गुनाह किया जा रहा है। और अमूमन देखिए कि लोग ऐसी चीज़ों में पढ़ते हैं ना तो सुन्नतों को अपना नहीं पाते, तो ये तर्ज़ अमल दुरुस्त नहीं है, इसे गुरेज और परहेज़ करना चाहिए और हर मौके महल की सुन्नत पर अमल करने का एहतमाम करना चाहिए। इसी से इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि ये चीज़ आपके दिल में आएगी और आप इसको बहुत अच्छी तरह से लेंगे। एक और चीज़, ठीक है, फ़र्ज़ नमाजों के बाद मसनून अस्कार और दुआएं छोड़कर इनके मुतबादिल ला इलाहा इल्लल्लाह के इज्तमाई विर्द और हाथ उठाकर इज्तमाई दुआ मांगने को इसलिए भी रिवाज दिया गया कि ये बातें हमारे मसलक की अलामत और पहचान बन जाएं। यानी आप खुद ही करेंगे, किसी मस्जिद में से अगर नमाज की अजान से पहले कुछ अल्फाज हों तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे ये फलाह मसलक वालों की मस्जिद है। किसी में बाज़ नमाज के फ़ौरन बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको भी पता होगा ये खास फिरके वाले करते हैं, सब नहीं करते। तो ये पांच दफ़ा मसलक को भी प्रमोट करने के लिए होता है। क्या किसी मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरई मसाइल और अहकाम से इस तरह रूगर्ज़दानी जायज़ है? इस्लाम का हुक्म क्या है कि फ़िरका वारियत को मिटाया जाए या इसको फ़रोग दिया जाए? तो हमें हर मौके पर यह ज़रूर याद रखना चाहिए कि फ़िरका वारियत को पीछे कर कर कुरान सुन्नत को आगे कर दिया जाए। सारी बात का खुलासा जिस पर यह मौजू पूरा हो रहा है, क्या कि फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठाकर इज्तमाई दुआ करना फ़ी नफ्स ही जायज़ है? यानी अपने लिए आप कोई दुआ करते हैं, और उस वक़्त भी याद रखिए कि ये सोचना कि अगर ना की तो नमाज पूरी नहीं हुई या गुनाह होगा, ये गलत है। नमाज जैसी एक इबादत कर ली, इस तरह दुआ की भी इबादत कर लीजिए, ये जायज़ है। लेकिन इस जायज बात का टकराव एक सुन्नत से हो रहा है, क्या अज़कार या औरात, लिहाजा इसे अपना मामूल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सुन्नत रसूल ही इस बात का ज़्यादा हक रखती है कि वह हर मुसलमान का मामूल मसलक और पहचान बने। इसलिए हमें अमूमन इन्हीं अस्कार और दुआओं का इख्तमाम करना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम का मामूल रहें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे। और आप भी सब एक दुआ मांगिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मंसूब है ये दुआ कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तबाअहु वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। ए अल्लाह, हक को हक करके दिखा और मुझे इसकी इत्तबा की तौफीक दे, और बातिल को बातिल करके दिखा और उससे रुकने की तौफीक दे। क्या खूबसूरत दुआ है, इस वक्त भी इसको मांग लें और आम ज़िंदगी में जहाँ डाउट है। मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, जो आप में से सुबह शाम सुनते होंगे, कई दफ़ा तीन सेशन भी दिन में आते हैं, कभी चार पांच भी आते हैं, कभी एक आता है, कभी एक भी नहीं आएगा छुट्टी में। मेरी हर बात सुनने से पहले ये दुआ मांग के बैठा करें। मैं आपको सिक्योरिटी दे रही हूँ, अल्लाह ना करे मैं कुछ जान के करूँ या मैं अनजाने में कोई गलत बात आपको बताऊँ तो कहीं आप गलत पे ना आ जाएं। तो दुआ मांगा करें, अल्लाह हम इनकी बात सुनते हैं, हमें क्या पता, हम तो भोले मासूम लोग हैं, हमने तो नहीं ये सीखी बातें। तो अल्लाह ताला मुझे सही बात को सुन के फिर मानने की और बातिल बात को सुनकर फिर छोड़ने की भी तौफीक दे।